सिटी हॉस्पिटल, देर रात। रिकवरी रूम की हल्की नीली लाइटें कमरे में एक अजीब सी शांति फैला रही थीं। मशीनों की बीप बीप धीमी आवाज़ें जैसे सबको बता रही थीं कि अब खतरा टल गया है, लेकिन थकान अभी बाकी है। डॉक्टर की दूसरी विजिट। डॉक्टर दोबारा चेक करने आया, सफ़ेद कोट हल्का सा मुड़ा हुआ, आँखों में पूरे दिन की थकान, पर बात करते हुए आवाज़ शांत। सब परिवार वाले उसके इर्द गिर्द खड़े थे। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप हटाकर कहा, अब हालत पहले से बेहतर है, दवाई चल रही है और ये सो रहे हैं। आप लोग घर जाकर आराम करें, रात भर कोई एक साथ रुक सकता है। रत्ना देवी ने थकान से भरी आवाज में पूछा, कोई खतरा तो नहीं अब? डॉक्टर ने सिर हिलाया, नहीं, अभी हालत स्थिर है, बस आराम की जरूरत है। आर्यन ने तुरंत कहा, मैं रुक जाऊंगा पापा के साथ। पर तभी श्यामली आगे आई, उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। नहीं, मैं रुक जाती हूँ, आप सब बहुत थक गए हैं। माँ, आपकी तबीयत पहले ही खराब है। आर्यन, तुम घर जाकर दादी को संभालो। एक पल को सब चुप रहे, फिर रत्ना देवी ने सिर हिलाया, ठीक है बेटा, तू रुक जा, हमें तुझ पर भरोसा है। आर्यन ने श्यामली की तरफ देखा, थोड़ा सा आभार, थोड़ा सा सुकून। कॉल करना अगर कुछ भी हो। कुछ ही मिनटों में सब हॉस्पिटल के भारी दरवाजे से बाहर चले गए। कॉरिडोर की आवाज़ें धीरे धीरे दूर हो गईं। कमरे में सिर्फ दो सांसें थीं, एक विश्वनाथ की, एक श्यामली की। अकेले कमरे की खामोशी। श्यामली काउच पर जाकर बैठी। लंबा दिन, थकान जैसे हड्डियों में भर गई थी, पर नींद, नींद तो जैसे आज रात उससे रूठी हुई थी। उसकी निगाहें बार बार विश्वनाथ की तरफ चली जातीं। माथे पर पट्टी, बांह में सलाइन, चेहरे पर हल्की सी झुकी बेचैनी। वो धीरे उठी। विश्वनाथ की चादर एक तरफ खिसक गई थी, कंधा ठंड में खुला हुआ था। श्यामली बिना आवाज किए पास गई, धीरे से चादर उठाई, बहुत सावधानी से, कहीं उन्हें तकलीफ ना हो। चादर उनके कंधे तक ठीक कर दी। उंगलियां एक पल को थमी, जैसे दिल किसी अनकहे डर को सुन रहा हो। वो वापस जाकर बैठ गई। रात और लंबी हो गई। कमरा शांत था, एसी की हल्की आवाज, मशीनों की धीमी लय और कमरे में फैली दवा की गंध। श्यामली ने अपने हाथ आपस में फंसाए, दिल अब भी भारी था। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो? वो सोचकर ही कांप गई। उसने आंखें बंद की। भगवान, उसकी आवाज बहुत ही धीमी थी, जैसे किसी ने दिल में से खींचकर निकाली हो। प्लीज, इनको कुछ मत होने देना, ये मजबूत हैं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी ये ठीक हो जाएं बस, और कुछ नहीं चाहिए। उसके पलकों पर फिर से नमी आ गई, पर उसने तुरंत पहुंच ली। दिल की वो खामोशी, वो कभी मानने को तैयार नहीं थी कि विश्वनाथ उसके दिल में कहीं जगह बना चुके हैं। मजबूरी का रिश्ता, बिना इच्छा की शादी। लेकिन आज थेरेपी मशीन की हर बीप उसके दिल की धड़कन बन चुकी थी। वो उन्हें देखती रही कुछ देर तक, चुपचाप, किसी अपने की तरह। एक गहरी सांस लेकर उसने अपने हाथ जोड़ लिए और सिर झुकाकर फिर प्रार्थना की, बस ठीक हो जाइए, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। लाइटें धीमी हो गईं, रात और भी गहरी हो गई, पर उस गहरी रात में श्यामली की आंखें खुली थीं और उसका दिल सिर्फ एक ही दुआ दोहरा रहा था। रात, हॉस्पिटल का शांत कॉरिडोर, घड़ी की सुइयां ठीक 12 पर टिक चुकी थीं। श्यामली काफी देर से काउच पर बैठी थी, मगर थकान अब शरीर से निकलकर आंखों में उतर आई थी। उसने धीरे से उठकर कमरे का दरवाजा खोला और बाहर चली आई। कॉरिडोर में हल्की पीली लाइट थी, हवा ठंडी और माहौल बिल्कुल सुनसान। लेकिन जैसे ही उसने सिर घुमाया, वो ठिठक गई। आर्यन दीवार के सहारे खड़ा था, हाथ जेब में, चेहरे पर बेचैनी, आंखों में वही दर्द जो श्यामली पहले भी कई बार देख चुकी थी। श्यामली हैरानी से बोली, आर्यन, तुम तो घर चले गए थे ना? आर्यन ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए, आवाज भारी, भावनाओं से भरी। तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ सकता हूँ? श्यामली ने पल भर को उसे देखा, नरमी भी थी, उलझन भी। आर्यन आगे बोला, हाँ, जिंदगी में एक बार मुझसे गलती हुई थी और शायद उसका बोझ मैं हमेशा उठाऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं दूसरी गलती नहीं करना चाहता। वो बिल्कुल पास आ गया, इतना कि श्यामली को उसका भारी सांस लेना भी सुनाई दे रहा था। मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ने वाला, उसने धीमे से कहा, और अचानक आर्यन ने उसके हाथ पकड़कर उन्हें अपने सीने से लगा लिया, जैसे इस एक पल में वो सारी दूरी मिटा देना चाहता हो जो जिंदगी ने उनके बीच खड़ी कर दी थी। श्यामली झट से पीछे हट गई, उसने हाथ छुड़ा लिए, आवाज में दृढ़ता लेकिन दर्द भी। आर्यन, प्लीज, बाकी सब ठीक है, लेकिन तुम ये सब करना बंद कर दो। आर्यन कुछ पल खामोश रहा, उसकी आंखों में चोट भी थी लेकिन समझ भी। धीरे से बोला, ठीक है, फिलहाल मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा जिससे तुम्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। वो एक कदम पीछे हटा, धीरे से दीवार से टिक गया, और इसी खामोशी में कॉरिडोर की ठंडी हवा के बीच। हवेली, देर रात। कमरों की लाइटें मंद थीं, दीवारों पर परछाइयां खिंची हुईं।
अस्पताल की चिंता अब घर की हवा में भी उतर आई थी। रत्ना देवी बिस्तर पर आधी लेटी हुई थी, दवाई खा चुकी थी पर आंखों में अभी भी बेचैनी थी। शकुंतला उनके सिरहाने बैठी थी, हाथ में पैनी का ग्लास, दूसरे हाथ में दवाई का डब्बा। माँ आप ले लीजिए, शकुंतला ने धीरे से कहा, डॉक्टर ने रात की दवा लेना जरूरी बताया है। रत्ना देवी दवा निकल कर दीवार की तरफ देखते हुए बोली, पता नहीं दिल घबरा रहा है, विश्वनाथ कैसे होंगे वहाँ। शकुंतला ने तुरंत उनके पैर दबाने शुरू कर दिए, आवाज में भरोसा भी था और खुद को समझाने की कोशिश भी। माँ आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं, भैया ठीक है, डॉक्टर ने कहा ना स्टेबल है। रत्ना देवी की आंखें नम हो गईं, पर जब तक मैं उसे खुद देख ना लूं तब तक चैन कैसे आएगा। शकुंतला ने उनके कंधे पर हाथ रखा, माँ श्यामली वही है, सब संभाल रही है, आर्यन भी साथ था थोड़ी देर पहले तक, चिंता मत कीजिए। रत्ना देवी सांस छोड़कर धीरे से लेट गई। श्यामली है तभी तो दिल थोड़ा शांत है, वो लड़की हमारी किस्मत में भेजी भगवान ने। शकुंतला रुक गई, चेहरे पर एक पल को कड़वाहट सी आई पर उसने छुपा ली, धीरे से बोली, हाँ माँ आप बस सो जाइए, सुबह होते ही हम हॉस्पिटल चलेंगे। रत्ना देवी ने आंखें बंद कर ली। शकुंतला ने कंबल ठीक किया, लाइट धीमी की और कमरे से धीरे धीरे बाहर निकल गई, पर जाते जाते उसकी आंखों में एक शक की लकीर फिर से उभर आई थी, जैसे उसे अब भी किसी चीज पर भरोसा ना हो।